أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے سیشن ون سنا اور اس کے اوپر غور کیا, اس کے ساتھ بھیجی ہوئی چیزیں, اس کے ساتھ بھیجی ہوئی امیجز کو دیکھا غور سے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی. میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر آپ نے سوالات بھیجے, یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ کوئی آپ کی بات سنے, اس پہ غور کرے, پھر اسے پروسیس کرے اور پھر سوال پوچھے, جس سے ان کی دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے. میں ایک ایک کر کے سوالوں کے جواب دیتی ہوں. پہلا سوال دو سیشن ون سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے اور اس کے بارے میں میں لنک بھیج چکی ہوں, جو عورتوں کی تراویح کے کا مسئلہ جو ہے خان صاحب نے پوچھا ہے. تو بات یہ ہے کہ عورتوں کا مل کر تراویح پڑھنا جو ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کوئی ثقہ روایات نہیں ملتی ہیں. پھر حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا کہ بی بی عائشہ لیڈ کر رہی ہیں کانگریگیشن, وہ جماعت کے اگلی لائن کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں, ان کے پاس قرآن ہے بھی اور خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ تراویح پڑھ رہی ہیں. تو حضرت عمر نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یہ ایک بڑی, یہ ایک بدعت ہے اور ایک اچھی بدعت ہے. ان سے یہ الفاظ روایت ہیں. تو بات یہ ہے کہ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی بات بنائی گئی ہے, کوئی نگیٹو مطلب نہیں ہے, ایک عبادت ہے جو کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے شاید نہیں دیکھی گئی یا نہیں کی گئی. تو خواتین کا مل کے تراویح پڑھنے میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسجد میں پڑھ رہی ہیں, مرد کی امامت میں پڑھ رہی ہیں ساری مل کے اپنے پردے کا انتظام کر کے, یا گھر میں خواتین مل کے تراویح پڑھ رہی ہیں جس میں ایک خاتون ہی لیڈ کر رہی ہیں اور وہ تلاوت کر رہی ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح قرآن سیکھیں اور سمجھیں اور اس سے ہمارے دلوں میں ایک دین کی موٹیویشن پیدا ہو. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضرور پڑھیں. ایک بات یاد رکھیں کہ بدعت کے ساتھ ایک جو بڑی کمپلیکیٹڈ بات ایسوسیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ بدعت کے چونکہ پہلے سے لکھے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے, قرآن میں نہیں ہیں, حدیث میں نہیں ہیں, تو بدعت کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب خواتین اپنے گھروں میں بچوں کو روتا چھوڑ کے اور گھر کے کام ادھورے چھوڑ کے اور خاص طور پہ تراویح میں شرکت کرنے جا رہی ہیں. بعض اوقات گھروں میں بدمزگیاں ہوتی ہیں کہ جی آپ ہمیں ڈراپ کر کے آئیں اور ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے ہے اور آپ ہمیں بالکل, ہمارا تو کوئی کام آپ نہیں کرتے ہیں. پھر خواتین وہاں کیا پہن کے جا رہی ہیں, اس کے باقاعدہ اس کے اپنے ایک مسئلے مسائل ہیں, وہ کس طرح تیار ہو کے جا رہی ہیں, وہ کتنی دیر سے گھر واپس آ رہی ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں انہیں سامنے رکھیں کہ مقصد قرآن سیکھنا ہے اور جو بہترین طریقے سے قرآن جس سے سیکھا جا سکتا ہے وہ طریقہ اپنانا چاہیے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اس کے بعد دوسرا سوال بچی نے پوچھا ہے کہ ایک میں نے تصویر بھیجی تھی ہندو مت کے, یہ کہ دل کا جو ہے, قلب کا, اس میں کیا مطلب ہے اور ہارٹ کے چاکراز جو ہیں, اور اس میں ایک ہرے رنگ کی تصویر تھی جس میں دو باتیں لکھی ہوئی تھیں. ایک تھی نو سینس آف پرسنل باؤنڈریز اور دوسری تھی اوور ایکسٹینڈنگ یور سیلف ٹو ادرس اوور یور اون پرسنل ڈیٹریمنٹ. اور اس کا مطلب انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. پہلی بات جو ہے کہ جب ہم اپنے دل کا علاج کرتے ہیں تو یہ نو سینس آف پرسنل باؤنڈریز, یعنی ہم تو لوگوں کی بے لوس خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ہم تو لوگوں کی دل سے خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پرسنل باؤنڈریز کا کیا مطلب ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب ایک دل سالم ہوتا ہے, قلب سلیم ہوتا ہے, تو اس دل میں ایک بیلنس ہوتا ہے. उस दिल को अपने खालिक की डिमांड्स का अंदाजा होता है, उसको अपने फराइज का, उसको अपने हुकूक का, उस दिल में एक मुकम्मल एहसास होता है कि मैंने अपने खालिक के पास जब वापस जाना है तो एक कल्ब सलीम लेकर जाना है, और वो एक मुकम्मल बैलेंस में काम कर रहा होता है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जहां हम अपनी जात की नफी करके किसी और का काम कर रहे होते हैं, किसी और की खुशी का इंतजाम कर रहे होते हैं। बल्कि बहुत सी बुजुर्ग ख्वातीन लड़कियों को अक्सर ये कहती हैं कि अपने आप को दुख दिए बगैर किसी को खुशी देना नामुमकिन है। तो याद रखें कि जब आप खुद दुखी होंगे तो आप किसी को क्या खुशी देंगे। तो ये जो पर्सनल बाउंड्री है, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे दीन की तरफ से हमारे ऊपर जो हुदूद हैं उनका एहतमाम करना, और दूसरा फिर अपनी जैसे जैसे दिल को हम प्योरीफाई करते हैं और अपने दिल को हम उन फराइज और हुकूक का एहसास दिलाते हैं जो हमारे खालिक की तरफ से हमें अता हुए हैं, तो ये पर्सनल बाउंड्रीज खुद से वाजह होती चली जाती हैं और हमें ये एहसास होता है के खालिक को नाराज करके हम मखलूक की रजामंदी या खुशी नहीं हासिल कर सकते। हर चीज में हमने खालिक को सामने रखना है। दूसरी बात है कि ओवर एक्सटेंडिंग योर सेल्फ टू अदर्स ओवर योर ओन पर्सनल डेट्रीमेंट, तो ये पहली ही बात की एक्सटेंशन है कि जब आपको पर्सनल बाउंड्रीज का एहसास नहीं होता तो फिर आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड करते हैं। पर्सनल बाउंड्री देखें जी, मेरी ये भी है कि मैंने अल्लाह को खुश करना है। अब अगर मेरे दिल में ये बात आ जाए, और जो एक कमजोरी है, जो दिल की एक बीमारी है, कि मैंने फलां को खुश करना है और मैंने ढमका को खुश करना है, और फिर इससे अगला स्टेप जो है वो ऑलमोस्ट खुशामद बन जाता है। किसी की खुशी के लिए काम इसलिए करना कि इससे अल्लाह खुश होगा एक बात है, और किसी की खुशी के लिए इसलिए काम करना कि इससे मुझे कोई अपना मतलब हासिल होगा या मुझसे ये इम्प्रेस हो जाएंगे या मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो पूरा हो जाएगा, इन दो बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो जब आपकी तवक्कुआत खालिक से हट के मखलूक से जुड़ जाती हैं, जब आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप एक डेट्रीमेंट की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, आपको उस प्रोसेस में नुकसान पहुंच सकता है। और जैसे जैसे इंसान के दिल का तस्किया होता है और उसका दिल साफ होता है, वो अपनी पर्सनल बाउंड्रीज भी पहचानना शुरू कर देता है, जो कि उसके दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, और उसकी तमाम तवक्कुआत खालिक से जुड़ जाती हैं, अल्लाह से जुड़ जाती हैं, वो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। अगर कोई उसको दुख पहुंचाए तो भी, चूंकि उसकी कोई एक्सपेक्टेशन शुरू से नहीं थी, उसे कोई बड़ी तकलीफ नहीं होती। और अगर कोई उसको अप्रिशिएट करे तो चूंकि उसकी पहले से ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो बात उसे बहुत बड़ी खुशी की लगती है। और यही एक कामयाब ताल्लुक की निशानी है कि उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन हम सिर्फ अपने अल्लाह से रख सकते हैं। फिर एक बड़ा ही मजे का सवाल जो भेजा गया है, और उसको मैंने बच्ची को ये कहा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी। उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट शुड वी फॉलो, आवर हार्ट और माइंड। ये बड़ा ही एक जबरदस्त सवाल है, और इसी से मिलता जुलता सवाल एक और बच्ची ने किया है कि जब दिमाग से, यानी मेडिकली और फलसफे की रूह से, हमारा दिमाग जो है वो अकल की सीट है और उसमें सारी अकल पाई जाती है और हम उससे सोचते हैं और हम उससे फैसले करते हैं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हमें दिल की पाकीजगी चाहिए और नफ्स और जमीर का ताल्लुक, ये जो मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन ये फैसला करना कि हम दिल की सुने या दिमाग की सुने, ये वाकई एक कन्फ्यूजिंग सवाल है। देखें जी, बात यह है कि मैंने आपको सेशन वन में समझाया है कि चाइनीज सिविलाइजेशन में, हिंदू मत में, बुद्ध मत में, मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में, यहूद में, दिल जो है इसको तमाम विजडम की सीट कहा गया है। यानी कि अब अकल मैं नहीं कह रही हूं, इट इज नॉट कॉमन सेंस और इट इज नॉट इवन अ सेंस, लेकिन जो आपका विजडम है, जिस चीज को हम हिकमत कहते हैं और जिस चीज पे अल्लाह की तरफ से हिदायत नाजिल होती है, वो कल्ब है और वो दिल है जो जिसमें वो नुक्ता पाया जाता है कि उसके ऊपर हिदायत नाजिल होती है। तो इसमें तो अब हम बहस नहीं करते कि आपकी तमाम जो हायर फंक्शंस हैं उसकी सीट दिल है। मेडिकल साइंस ये बता चुकी है कि दिल जो है वो हमारे दिमाग में हिप्पोकैम्पस के साथ कनेक्टेड है, और ये स्ट्रक्चर जो है दिमाग में, इसका ताल्लुक सारे जज्बात से है। यानी दिमाग हमें जब कोई काम करने का कहता है तो वो सारा कुछ जो उसका प्रोसेस है वो हिप्पोकैम्पस में से होके गुजरता है, और हिप्पोकैम्पस में मौजूद हमारी जो मेमोरीज हैं, जो हमारी यादें हैं और जो हमारे जज्बात हैं, हम उसके मुताबिक फिर एक फैसला करते हैं। और ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है कि दिमाग से एक बात उठती है, आपको कोई बात आप सुनते हैं, आपके कानों से अंदर जाती है, वो दिमाग में जाती है, और दिमाग में ये आता है कि ये बात सुन के तो आपने अगले बंदे को बड़ा सख्त जवाब देना है क्योंकि उन्होंने बड़ी गलत बात की है। अब दिमाग में जो ये हिप्पोकैम्पस जो मौजूद है, जो दिल के साथ जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें पुरानी यादें पड़ी हुई हैं, इसमें आपके बचपन के खौफ पड़े हुए हैं, खुशियां पड़ी हुई हैं, दुख दर्द पड़े हुए हैं, आपके सारे एक्सपीरियंसेस इसके अंदर पड़े हुए हैं, और ये दिल के साथ कनेक्टेड है। और दिल से आपका एक ऐसा रिएक्शन होता है जो उस वक्त जो आप अगले बंदे को बात सुनाना चाहते हैं, आप वो बात उस रिएक्शन के मुताबिक कहते हैं, या उसे सख्त कर देते हैं, या उसे नरम कर देते हैं, या हो सकता है आप उस बात को दबा लें। तो जिस कदर आपका दिल सेहतमंद होगा और हेल्दी होगा, और जिस कदर आपके दिल और हिप्पोकैम्पस के बीच में वो ताल्लुक मजबूत होगा, उतने ही आपके फैसले ठीक होंगे। और इस बात की रूह से अब आपको समझ आ गई होगी कि असली फैसले जो हैं हमारे, वो दिमाग से नहीं, वो दिल से आ रहे हैं। तो ये तो अब हार्ट और माइंड, आपको पता चल गया होगा कि हार्ट और माइंड एक तो अव्वल तो कोई अलग चीजें नहीं है, और दूसरा आपका माइंड जो है वो एक कंप्यूटर की तरह है, इनपुट आउटपुट वाले सर्किट्स हैं, जो प्रोसेसिंग हो रही है असल में अंदर, जो रिफाइनमेंट हो रही है, जो सेंसर चल रहा है दिमाग के अंदर, उसका ताल्लुक डायरेक्टली दिल से है। तो इसीलिए दिल को पाक रखना जरूरी है। आपके दिमाग में जो खून जा रहा है, जो ऑक्सीजन जा रही है, जो आपके दिमाग में ग्लूकोज जा रहा है, जो आपके दिमाग में सारे विटामिन्स जा रहे हैं जिसे दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ी देर रुककर सोचें ये कहाँ से आ रहा है। ये सब कुछ दिल से आ रहा है, और अगर दिल की हालत ठीक नहीं होगी तो फिर दिमाग का ठीक काम करना बहुत मुश्किल है। अगला सवाल, और ये भी बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, दो सवाल जुड़े हुए हैं। पहला सवाल है कि जमीर और नफ्स में क्या फर्क है। तो प्यारी बच्ची, नफ्स जो है ये इसके इंग्लिश में तीन लेवल्स हैं। नफ्स वो चीज है, एक हमारा इंसान जो है ना, ये एक डब्बा है, ये एक बैग है, और इसके अंदर दो चीजें हैं, एक रूह है और एक नफ्स है। रूह हमें ये वो अमर है जो अल्लाह की तरफ से जब जिस्म में दाखिल हुआ तो हम जिंदा हो गए और हम इंसान बन गए, और यही अल्लाह के अमर से ये रूह जब हमें छोड़ जाती है तो हम डेड बॉडी बन जाते हैं। इस रूह के अलावा जो हम हैं, जो हमारा जिस्म है, गोश्त पोस्त का बना हुआ जिस्म है, हमारा दिमाग है, हमारी फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ है, वो चीज नफ्स है। और ये नफ्स जो है ये हमारी रूहें सबकी एक जैसी हैं क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से हैं। ये नफ्स की वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। नफ्स के तीन लेवल्स हैं साइकोलॉजी में, जो आपने शायद पढ़े भी हों, जिनको हम लोग कहते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो है ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जैसे भूख लग गई है, बच्चा जब पैंपर गीला कर देता है तो रोना शुरू कर देता है, उसकी जरूरत होती है कि कोई मेरा पैंपर बदल दे। भूख में हम लोग बिलबिलाते हैं, शोर मचाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। इसी तरह सेक्स की जो ड्राइव है, सेक्सुअल ड्राइव, ये सारी इड में आती हैं। ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल जो जानवरों में भी पाई जाती हैं और इंसानों में भी, ये वो हैवानी जिबिलतें हैं। दूसरा लेवल जो है नफ्स का, उसे ईगो कहते हैं, और इस चीज को कुरान में नफ्से लवामा कहा गया है। जो इड है, जो बिल्कुल हैवानी जिबिलत मैंने आपको बताई है, इसको नफ्से अमारा कहते हैं, और कुरान में है कि नफ्से अमारा जो है ये बुराई का हुक्म देता है, यानी ये रूह को कमजोर करने वाली चीजों का एक हुक्म देता है। जैसे रोजे में हम भूख को कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल करते हैं, प्यास को कंट्रोल करते हैं, तो रोजा दरअसल इड को कंट्रोल करने का एक वेपन है जो अल्लाह ने हमें दिया है, जो हमें हमारी रूह के करीब कर देता है, जो हमारे दिल को पाक साफ कर देता है। तो नफ्स अमारा आपका बेसिक नफ्स है. नेक्स्ट लेवल जो है इसका, ये नफ्स लवामा है या जिसको हम ईगो कहते हैं इंग्लिश में. और ये वो नफ्स है जो मलामत करता है जब हम कोई गलत काम करते हैं, और ये वो चीज है जिसे आप उर्दू में जमीर कहते हैं. तो जमीर जो है ये इंग्लिश में ईगो है और अरबी में नफ्स लवामा है. ये वो नफ्स है जो हमें मलामत करता है, हमें गिल्ट का एहसास दिलाता है. इससे अगला लेवल, जब इंसान इसको भी फतह कर लेता है और वो ऐसे काम नहीं करता जिस पे उसको मलामत होने लगती है, तो वो फिर नफ्से मुतमैन्ना में पहुंच जाता है. इंतहाई खूबसूरत सूरह फजर की आयत है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमैन्ना इर्जी इला रब्बिकी राधियतम मर्जिया. ये वो नफ्स है जो अपने खालिक से राजी है और जिससे उसका खालिक राजी है, और इसको इंग्लिश में सुपर ईगो कहते हैं. सुपर ईगो उनके फलसफे के मुताबिक, वेस्टर्न फलसफे के मुताबिक, सुपरमैन में पाई जाती है, आम लोगों में नहीं पाई जाती. बड़ी जबरदस्त चीज है. और ये वो कुरान में जो वादा है कि इर्जी इला रब्बी की फत खुलीफी इबादी वत खुलीफी जन्नती, कि मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरे प्यारे बंदों में, और मैं तुझे अपनी जन्नत में दाखिल करता हूँ. तो नफ्स मुतमैन्ना हम सब का मकसद होना चाहिए कि हम नफ्स मुतमैन्ना हासिल कर लें. तो अब जमीर और नफ्स का फर्क भी मैंने आपको बता दिया है. जमीर नफ्स लवामा है और नफ्स के तीन लेवल्स भी मैंने आपको समझा दिए हैं. जो साइकोलॉजी में है वही उर्दू में भी है और वही कुरान में भी है माशाल्लाह. तो फिर आपका सवाल अगला ये था कि नफ्स और जमीर का ताल्लुक दिल से क्यों है. और नफ्स को सुन के आपको समझ आ गया होगा कि इसका तो ताल्लुक जो है बहुत हद तक दिमाग से है, लेकिन नफ्स मुतमैन्ना जो चीज है, जो अल्टीमेट हमें चाहिए है, उसका ताल्लुक टोटली दिल से है. वो जो दिल पे नाजिल होने वाली हिदायत है, वो हम उसके मुताबिक जब एक्ट करते हैं और अपने दिल को खालिस करते हैं, अपने दिल से हम दुनियावी ख्वाहिशात निकालते हैं और हैवानी जिबिलतें और शहवात, जो मैंने आपको शुभात और शहवात समझाई थी, जब वो निकाल देते हैं तो आखिर में सिर्फ नफ्स मुतमैन्ना रह जाता है. ये वो नफ्स है जो असल में हमारी रूह है, जो अल्लाह से राजी होता है. ये सवाल भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. इसके बाद अगला सवाल था, हाँ ये सहर का सवाल था कि आई एम इटर्नली लव्ड, जो वो हिंदुओं के चाक्रा में लिखा हुआ था एक नीचे मेडिटेशन के लिए, इसका क्या मतलब है. तो आई एम इटर्नली लव्ड जो है ये, इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसी मखलूक हूं जो एक मोहब्बत के समंदर में डूबी हुई है, यानी कि मेरे खालिक की मोहब्बत जो खालिक में है मेरे लिए, जैसे उसने मुझे किस कदर मोहब्बत से बनाया है और उसने मेरी एक एक चीज पे कितनी तवज्जो दी है और उसने मेरे इर्द गिर्द के हालात जो बनाए हैं, जो हवा में मैं सांस ले रही हूँ, जो पानी मैं पी रही हूँ, जो खुराक उसने मेरे लिए मुहैया की है, जिस तरह का उसने मेरा स्ट्रक्चर बनाया है, जो दोस्त साथी उसने मुझे दिए हैं, यानी हर चीज के बारे में आप ये सोचें और आप शुक्र अदा करें, जो हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं. जैसे कुरान जब शुरू होता है तो पहला लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह. तो ग्रेटिट्यूड की कीमत बहुत ज्यादा है और दिल की सफाई जो है ये सही मानों में शुक्रगुजारी और ग्रेटिट्यूड के बगैर नहीं हो सकती है. तो आई एम इटर्नली लव्ड का मतलब ये है कि मैं, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है और मैं अल्लाह से मोहब्बत, अपने खालिक से मोहब्बत करती हूँ. और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मैं अबद तक, अजल से लेके अबद तक एक मोहब्बत के समंदर में डूबी हुई हूँ. इसका ये मतलब है. तो इंशाल्लाह कल सेशन 2 में फिर दोबारा से डिस्कशन करते हैं. उम्मीद है मैंने आपके सब सवालों का जवाब दे दिया होगा. आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.